ओम शांति, ओम शांति। तो आज बाबा ने कौन सा धंधा बताया? आपका धंधा क्या है? क्या धंधा है? सभी को सुजाग करना, ठीक है ना? तो ठीक ठाक धंधा चल रहा है? सुजाग करने की धंधा चल रहा है? सुजाग माना जगाना, है ना? तो दुनिया में भी जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं खास, तो आपस में क्या पूछते हैं? भाई आपका धंधा कैसे चल रहा है? तो आपका धंधा कैसे चल रहा है? ये आप सोचते हैं कि बाबा ने तो हमें सुजाग कर दिया, बाबा ने तो हमें अज्ञान की नींद से जगा दिया, हमारा कल्याण हो गया, बाकी दुनिया से क्या लेना देना? ऐसा तो नहीं है ना? हमारा कर्तव्य क्या बनता है? जैसे बाबा ने हमें जगाया, ऐसे हमें भी। और अगर बाबा ने हमें जगाया, देखो आप सोचो, संसार की करोड़ों आत्माओं में से बाबा ने मुझे जगाया, जगाया कि नहीं? और हम आराम से आलस्य अलबेलेपन रूपी डनलप के गद्दे पर सोए रहे, तो फिर बाबा देख करके क्या सोचेंगे? बाबा हमें इसलिए नहीं जगाया कि हम सोए रहें, अलबेले रहें, एक दूसरे को देखते रहें, तेरे मेरे में रहें, इधर उधर की बातों में रहें, इसलिए नहीं जगाया। बाबा इसलिए जगाया कि ये मेरे बच्चे दूसरों को भी जगाएं। हमारे ऊपर आस रखा है ना, विश्वास रखा है, रखा है कि नहीं? तो उसके आशाओं को हम पूर्ण करेंगे कि नहीं पूर्ण करेंगे? तो हमें दूसरों को भी जगाना है, इसलिए बाबा ने हमें जगाया है, ठीक है ना? तो ये धंधा है जगाने की सबको। और कौन सी धंधा? समय पर समय बाबा मुरली में कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा जो है ज्ञान रत्नों का धंधा, जो बाबा का धंधा वही हमारा धंधा। अब सोचो हमारा धंधा क्या है? हम ऐसी कमाई करते हैं जो कमाई कितने जन्मों तक? हाँ 21 जन्म, पूरे 84 जन्मों तक चलती ही रहेगी। बताओ इतनी बड़ी कमाई। कई बार मैं सोचता हूं, एक गांव का जो प्रधान होता है ना, जब वोट पड़ता है तो गांव का प्रधान, उसको गांव का प्रधान बनना है, और उसके लिए भी वो क्या करता है? घर घर जाता है, एक एक के पास जाता है, हाथ जोड़ता है, भैया ध्यान रखना। किस बात का? वोट हमें ही देना नहीं, क्या बनना है उसको? गांव का प्रधान। और वो भी बने ना, जीतेगा तभी तो बनेगा ना। और हमें क्या बनना है? बोलो बोलो, क्या बनना है आपको? लक्ष्मी नारायण विश्व महाराजन। अच्छा हमारा क्या हाल होता है? हमारा कोई पूछ न ले, बैज भी लगाएंगे तो छोटा सा लगाएंगे। कोई ओम शांति में आप जाना, हमें तो नशे से है ना, आप सोचो तो सही, हमें कौन सा ज्ञान मिला है? और दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन आप किस संस्था से जुड़े हैं? जहां यहां पर कोई गुरु गोसाई विद्वान पंडित आचार महामंडलेश्वर वो है क्या कोई? यहां ऐसा कोई नहीं, यहां पर स्वयं, जहां पर स्वयं भगवान आकर के पढ़ाते हों। तो हमारे ऊपर कितनी बड़ी जवाबदारी। तो बाबा अब ये सोचो, आप सोचो एक मिनट, आप समय देता हूं, आप सोचो एक मिनट के अंदर, बाबा ने हमें कौन सी जवाबदारियां दी हैं, कौन सी जिम्मेवारियां दी हैं, हमारा धंधा क्या है? सोचो एक मिनट, फिर आप इसका उत्तर देना। क्या करना? हर एक आत्मा को बाबा का पैगाम देना, यज्ञ की संभाल करना, आप समान बनाना, सभी को सुख देना, धरती पर स्वर्ग लाना। देखो, एक जो रोड बनाते हैं या पुल बनाते हैं, है ना भाई, आप कहते ना मैं इस पुल बनाने का ठेका लिया हूं, रोड बनाने का ठेकेदार होते ना, वो एक रोड और पुल बनाने का ठेका लेते हैं, और आपने कौन सा ठेका ले लिया है, नरक को स्वर्ग बनाने का। इतने बड़े ठेकेदार हैं कि आप स्वर्ग, इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया में परिवर्तन करने का ठेका लिया है। तो कई बार जब हम बैठते हैं ना योग में, तो आप ये भी सोचो कि हमारी बाबा ने हमें क्या जिम्मेवारी दी है, क्या करने के लिए कहा है, है ना, हमारा धंधा क्या है, क्या मैं वही कर रहा हूं जो बाबा हमसे चाहते हैं। पतित आत्माओं को पावन बनाना, कौड़ी तुल्य आत्माओं को हीरे तुल्य बनाना, है ना, कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया में परिवर्तन करना, रावण राज्य को खत्म कर राम राज्य बनाना, मनुष्य को देवता बनाना, ये आपका धंधा है, अंधों की लाठी बनना। तो इतना बड़ा जिसके पास धंधा चल रहा हो, वो आलस अलबेलेपन में आ सकते हैं क्या? हा? उनको भी आगे बढ़ाना, बहुत सुंदर बात। तो अपना कर्तव्य याद रखना है, ठीक है ना, कि हमारा कर्तव्य क्या है, बाबा ने हमें किस लिए अपना बनाया है। आप सोचो, देखो, एक बार बाबा ने कहा, अपने आप को परिवर्तन करने का सहज साधन है स्वयं का टीचर बनना। दूसरा, कोई आपको कितना भी कहे तो आपको थोड़ा सा अभिमान भी आ सकता, अरे मैं इतना पुराना हूं, मुझे सब कुछ पता है, ये कौन है हमें सुनाने वाला, बताने वाला। लेकिन जब हम खुद के टीचर बनते हैं ना, और खुद के टीचर बनकर के खुद को समझाते हैं, तो हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। तो ज्यादा नहीं, आप 5 मिनट रोज अपने आप से बातें करो, देखो बहुत मजा आएगा। आपके अंदर जो पुराने संस्कार स्वभाव है कैसे चेंज होते हैं, बहुत शक्ति आ जाएगी आपके अंदर। अपने आप से पूछो कुछ। हम दूसरे से तो खूब बातें करते हैं, है ना, घंटों बीत जाता है पता नहीं चलता। अगर हम रोज 5 मिनट भी अपने आप से बातें कर ले ना, तो बड़ा आत्मा को सुख मिलेगा और हम अपने आप को सहज परिवर्तन कर सकते हैं। करते हैं बातें, तो क्या अपने आप से बातें करना है, है? अपने आप से बातें करो, क्या मैं इस ब्राह्मण जीवन का संपूर्ण सुख ले रहा हूं, क्या मैं योग में पूरी तरह से संतुष्ट हूं, क्या मेरा योग अच्छे से लगता है, क्या मैं सभी को मन वचन कर्म से सुख देता हूं, क्या मैं अपने समय स्वास्थ्य संकल्प को सफल करता हूं, है ना। ऐसे ऐसे अपने से आप ऐसे ना, आपको होमवर्क है, इसके ऊपर आप चिंतन करना, कम से कम 10-15 बातें नोट करना, ठीक है ना, अपने आप से क्या बातें करना। और एक एक बातें, मैं स्वराज्य अधिकारी बना हूं, है ना, ज्ञान स्वरूप मेरा जीवन बना है, जो मैं मुरली सुनता हूं क्या मैं वो स्वरूप में लाता हूं, प्रैक्टिकल जीवन में लाता हूं, क्या मैं स्वचिंतन स्वदर्शन स्वपरिवर्तन करता हूं, कहीं हमारा समय दूसरों को देखने में तो नहीं जाता है, क्या मैं सभी को संतुष्ट करता हूं, क्या मेरी योग में पूरी एकाग्रता होती है, योग का संपूर्ण सुख लेता हूं, यदि नहीं तो क्या मेरा युद्ध में ही क्या समय बीत जाएगा, क्या संग, क्या मैं योग का कभी सुख ही नहीं ले सकता क्या। अपने आप से पूछो, देखो कितना आनंद आएगा और बहुत परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो बाबा ने आज कहा अपना धंधा, तो रोज हम अपने आप से पूछें, रोज रात में सोने के पहले चेक करना, आज हमारा सारा दिन का धंधा कैसे चला, ठीक है। जैसे अभी कल परसों कुछ दिन पहले मुरली में था ना, कि जब तक किसी को ज्ञान सुना नहीं देना है तब तक, हाँ 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 रोटी नहीं खाना है। तो एक बार जानकी दादी सुना रही थी कि मैं नाश्ता कर रही थी, इतने में बाबा आए और बाबा ने पूछा, बच्ची किसी को ज्ञान सुनाया? तो दादी चुप हो गई। तो बाबा ने कहा, बच्ची जब तक किसी को ज्ञान सुना नहीं लेना है तब तक नाश्ता नहीं करनी है। दादी ने कहा, तब से लेकर के आज तक जब तक हम किसी को ज्ञान सुना नहीं लेते तब तक वो नियम बना लिया। अच्छा अब कई बार हम ये कहते हैं कि अच्छा माताएं खास ये कह सकते हैं कि मैं तो घर में रहती हूं, हम किसको ज्ञान सुनाने जाएं? हाँ तो मुरली सुनने तो जाते हैं ना, जब मुरली सुनने जाते हैं तो जब मुरली से बाहर निकलते तो आपस में एक दो को आज बाबा ने क्या कहा, आपस में ही सुना लो, वो भी हो गया है ना ज्ञान। मना कहने का भाव एक दूसरे को कुछ ना कुछ ज्ञान रतन सुना करके ही फिर स्वीकार करना है। अच्छा फिर कई बार कई लोग कहते हैं अगर हम किसी से मुरली की पॉइंट पूछते भी ना तो वो आंख दिखाता है, तुम बड़े ज्ञानी बनने आए हो है ना, मुरली की पॉइंट पूछ रहे हो, हमें पता नहीं है क्या, उसको अभिमान आता है। तो आप ये अगर सोचते हो कि मैं मुरली की पॉइंट पूछता हूं या पूछती हूं तो उसको अभिमान आता है, तो आप उसी से पूछो हाँ कि भैया आज का वरदान क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा, आप जरा सुनाएंगे। अब उसको तो याद नहीं है, है ना, तो जरूर थोड़ा सा सोचेगा अरे आज का वरदान है ना, फिर आप सुनाओ, अच्छा आज का वरदान, आप सुनाते हुए बोलो आज का ये वरदान था, तो वो कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बोला। वो भी सोचेगा है ना छुट्टी मिला। तो कहने का भाव युक्ति से है ना, युक्ति से भी आप सुना सकते हो। तो रोज हमें अपना धंधा, जो बाबा ने हमें धंधा दिया है वो धंधा रोज करते रहना है। तो सुजाग करने की धंधा, तो मैं इसके ऊपर सोच रहा था कि सुजाग करना माना क्या। हम है ना, यदि हम खुद सुजाग, सुजाग माना जगे रहना ना, जब हम खुद जागृत अवस्था में हम खुद जगे हुए हैं तभी तो हम दूसरों को जगा सकते हैं ना। सोया हुआ व्यक्ति दूसरों को जगाएगा क्या? दूसरा उठेगा देखेगा ये सोया हुआ है तो वो भी सोचेगा मैं भी अभी सो लेता हूँ, अभी तो ये भी तो सोया नहीं, अमृत वेला होता है ना ऐसे। हाँ हमारी नजर जाती है घड़ी के ऊपर, हाँ फिर हम देखते हैं बाजू में ये भी तो सोया हुआ है, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, हम कोई हठी योगी थोड़ी है, बाबा ने कहा है ना सहज राज योगी हो, आराम से उठेंगे और सो जाते हैं क्योंकि वो सोया हुआ है, उसका प्रभाव देखो वो ताकतवर बन गया और हम जगे हुए हैं फिर भी हम कमजोर हो गए। तो हम भूल जाते हैं ना कि बाबा की श्रीमत क्या है। तो जब हम खुद जगे हुए होंगे तभी हम दूसरों को जगा सकते हैं। अब देखें हम जगा रहता हूं, जगे हुए में भी कभी मैं भले हम जगे हैं, दुनिया में भी तो लोग जगे हैं, लेकिन बाबा कहता सबको जगाओ, तो किस बात से जगाना है? अज्ञान नींद में जो सोए हुए हैं, बाकी हम तो अज्ञान नींद में नहीं सोए, हम जगे हैं, लेकिन कभी कभी हम और नींद में सो जाते हैं। कौन सी नींद? गफलत की नींद, आलस्य अलबेलेपन की नींद। और जब ये नींद आती है तो एक संकल्प आता है, आप नोट करना, अगर ये संकल्प आवे तो आप समझ जाना कि अभी मुझे नींद आ रही है ना, अपने आप को बचा लेना है। और वो संकल्प ये आता है, अरे सब चलता है, कौन संपन्न संपूर्ण बना है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कमी कमजोरी होती है, मैंने पुरानों को भी देख लिया है, ऐसे ऐसे अभी तो मैं नया हूं, थोड़ी छोटी मोटी कमी कमजोरी तो होती है, ठीक हो जाएगा, बदल लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे। अगर इस प्रकार के संकल्प आ रहे हैं तो सोच लेना कि ये माया जो है गफलत की नींद में, आलस्य अलबेले की नींद में हमें सुला रही है, अलर्ट हो जाना है। तो बाबा ने कहा कि ये नहीं सोचना सब चलता है, लेकिन और जो ये सोचते हैं सब चलता है, अपने आप को चलाने की कोशिश करते हैं, तो बाबा ने कहा अंत में वही हाय मेरा भाग्य कहकर चिल्लाएंगे। तो संगम युग के समय श्वास संकल्प को अच्छी तरह से सफल करना है। कल गुलजार दादी के निमित्त भोग लग रहा था तो मैं भी नीचे गया था, तो जो संदेशी बहन भोग लगाई उसने बाबा से पूछा, बाबा हमारी प्यारी गुलजार दादी को आपने क्यों बुलाया? तो पता है बाबा ने क्या कहा? बड़े राज की बात बाबा ने बोला, और आप लोग अगर ये बात ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे ना, तो आपका पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। जब संदेशी बहन ने बड़े प्यार से बाबा को कहा कि बाबा हमारी इतनी मीठी प्यारी दादी गुलजार दादी, जिनसे हम बाप दादा से मिलन मनाते थे, आपने हमारी दादी को क्यों बुला लिया? तो बाबा ने कहा, बच्ची मैं देखता था कि जो ब्राह्मण बच्चे हैं, है ना, जो हम सब ब्राह्मण बच्चे हैं, तो बाबा ने वतन से देखा कि ब्राह्मण बच्चों में अंदर तो है संकल्प मैं संपन्न संपूर्ण बनूं, अंदर ये बात नहीं, हर व्यक्ति हर ब्राह्मण आत्मा के अंदर ये संकल्प है कि मैं बाप समान बन जाऊं, संपन्न संपूर्ण बन जाऊं। लेकिन बाबा ने कहा कि संकल्प होते हुए भी बच्चे आलस अलबेलेपन की नींद में सोए रहते हैं, समय व्यर्थ इधर उधर की बातों में व्यर्थ, देखने में सुनने में समय बहुत व्यर्थ जाता है, बार बार दृढ़ संकल्प करते हुए भी अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, व्यर्थ का प्रभाव ज्यादा है, व्यर्थ में ज्यादा चले जा रहे हैं। संगम युग के समय श्वास संकल्प को जो इसका महत्व है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों के अंदर शक्ति भरने के लिए बाबा ने डबल इंजन लिया, है ना, बाबा ने ना कहा ये डबल रथ। तो अभी तक है ना, जैसे ब्रह्मा बाबा थे तो अभी गुलजार दादी दो, है ना, सिर्फ बाबा के ये जो रथ है, तो बाबा ने कहा अब इन दोनों जो ये दोनों महाशक्तियां हैं, है ना, क्योंकि गुलजार दादी भी तो बाप समान बन गई ना, तो इन दोनों महाशक्तियों के द्वारा बच्चों के अंदर वो शक्ति ताकत भरना है। तो दादी भी अव्यक्त वतन वासी हुई किस लिए? हमारी सेवा के लिए, हमें संपन्न और संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए। फिर वो बहन पूछती है कि अच्छा बाबा मैं नीचे जाकर के सब भाई बहनों को क्या बताऊं, आपकी दादी की क्या, आपकी और दादी की क्या आशाएं हैं? तो बाबा ने यही कहा कि बच्ची बच्चों को यही करना कहना, हमारी दादी की यही आशाएं हैं सभी बच्चों के लिए कि हर बच्चा अव्यर्थ से मुक्त बने और समर्थ स्वरूप बने, बार बार अशरीरीपन का अभ्यास करे, यही चीज अंत में काम आएगा। आज भी बाबा ने कहा था कि अंत में बाबा के सिवाय और कुछ भी याद आया तो फेल। अगर ये सब बातें देखते हुए भी हम आलस्य अलबेलेपन की नींद में सोए रहे तो क्या कहा जाएगा? देखिए, मैं तो ये सोच रहा था कि एक बार नोटबंदी हुई तो लोगों ने क्या किया, जिनके पास है ना ज्यादा पैसे थे वो क्या किया, कोई जला रहा है, कोई डस्टबिन में फेंक रहा है, कोई इधर कर रहा है, गवर्नमेंट को पता ना चल जाए, है ना, पैसा उसका कहां गया, है ना, इधर मना उसको फेंकना पड़ा अपना जान बचाने के लिए कि गवर्नमेंट को पता ना चल जाए कि इसके पास इतना पैसा कहां से आया, सारा का सारा उसको डस्टबिन में जलाना पड़ा, नदी में फेंकना, कितनी सारी बातें सुना, और किसी का तो ऐसे रह गया, ऐसे पड़ा रह गया, कुछ काम में नहीं आया। दूसरा, अभी लॉकडाउन के समय सब, चाहे छोटे हो बड़े हैं, सब अपने घर में, सब कोरोना ने सबको एक लाइन में लगा दिया, बैठे रहो अपने घर के अंदर, ये सब इशारे हैं बाबा के, है ना। तीसरा, बाबा खुद आना बंद, और बाबा ने अपने रथ को भी बुला लिया ऊपर। और इतने पर भी यदि हमारी आंखें बंद रहे, हम आलस अलबेलेपन में सोए रहे, और फिर अचानक कुछ हो जाए और हम बाबा को कहें बाबा आपने इशारा नहीं दिया, और कौन सा इशारा बाबा दे। इतना सब कुछ इशारा मिलते हुए भी हमारी बुद्धि की आंखें ना खुले, हमें ना समझ में आए, तो बाबा और कौन सा इशारा दे। फिर भी देखो बाबा कितना रहम दिल है, दयालु है, कृपालु है, कि अभी भी है ना कि जो अंत में बच्चे आ रहे हैं वो ये ना कहे कि बाबा हमें आपने ऐसी घड़ी पर बुलाया जब आपने आना बंद कर दिया और हमारी दादी को बुला लिया, तो भी बाबा अव्यक्ति रूप से कैसे बच्चों को वो महसूसता, वो पालना करा रहे हैं। अभी भी जो बाप दादा हाँ स्क्रीन पर दिखाते हैं तो हर एक का क्या अनुभव होता है कि हमने बाबा से मिल लिया, बाबा ने मुझे भरपूर कर दिया। और यहाँ तक विदेशी बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो भी कहते हैं अरे बाबा से, बाबा ने तो मुझे भरपूर कर दिया। तो ये किसकी कमाल है, बाबा की कमाल है। तो बाबा इतना रहम का सागर कि वो हमें इतना भरपूर कर रहा है। तो कहने का भाव ये है कि हमें अपने समय स्वास्थ्य संकल्प को पूरी तरह से सफल करना है और व्यर्थ से स्वयं को मुक्त रखना। दूसरी बात, प्रश्न में बाबा ने क्या बोला, गरीब बच्चे साहूकार से भी आगे चले जाते हैं कैसे, दान पुण्य करने की क्या होती उनके अंदर। हाँ आपने देखा होगा जो बड़े हैं अमीर हैं वो अच्छा कुछ यज्ञ सेवा भी करना होगा ना, तो एक दूसरे से पूछेंगे अच्छा आपने कितना किया कितना किया, मतलब एक दूसरे से पूछेंगे। और जो गरीब होगा वो कितनी बड़ी दिल से। हाँ देखो मैं सोच रहा हूं कि बाबा जो यज्ञ में जो 58-54 दिया उनका आज नाम मुरली में आ रहा है, हाँ? याद आ रहा है ना मुरली में कि ये 58 उसने अपना महल ले लिया। और जो आज लाखों देने वाले हैं उनका, तो जो समय पर, समय का महत्व होता है, जिसने समय पर यज्ञ में, जब यज्ञ में जरूरत, अच्छा आज भी कोई उस समय की बात नहीं, आज भी कई बार समय पर जरूरत पड़ती है, हाँ ना, सेंटर पर आपको बहन जी ने बुलाया, कोई सेवा है, तो हम बहन जी की सेवा करने नहीं जा रहे हैं, हम तो अपना भाग्य बना रहे हैं, जितना हमें सेवा का चांस मिले हम ये सोचे वाह मेरा भाग्य, मुझे ही कहा गया, सारे लोगों को छोड़ करके मुझे ही सेवा का मौका मिला, है ना, और दूसरे को कहा नहीं गया बाबा हमारा कितना ध्यान रखते हैं। और कई हैं आंख दिखाते हैं, मैं ही हूं क्या, मैं ही दिखाई पड़ता हूं क्या, और लोग नहीं है क्या अरे और बाबा आपका भाग्य बनाना चाहते हैं और आप दूसरे को कि और लोग नहीं है क्या। अच्छा कुछ प्राप्ति हो तो आप सोच, आप कहेंगे क्या कि और लोग नहीं है क्या, मुझे ये सारा कुछ मिल रहा है, ऐसे बोलेंगे क्या। उस समय तो हम चाहेंगे ना दौड़ करके फटो से मुझे सब कुछ मिल जाए। तो ऐसे समय पर ये हम सोचें कि मेरा भाग्य है। मुझे याद आ रहा है एक 97 के अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि कई बच्चे सोचते हैं से सारा दिन सेवा करके आए और उनको टीचर बहन ने एक गिलास पानी नहीं पूछा, तो कहते हैं देखा मैंने इतना सेवा किया, टीचर बहन ने एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछा, ये बहनें बड़े हाँ बस सेवा कराती हैं, कुछ पूछती ही नहीं है, क्या फायदा, जैसे और लोग अपने घर में बैठे रहते हैं हम भी बैठे रहेंगे, सेवा करने से क्या मिलेगा, हाँ बस सेवा करा लेते हैं और जो आगे पीछे घूमते हैं बस उन्हीं की महिमा होती है, हम इतनी सेवा करते हैं जरा भी एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछते। तो बाबा ने उसमें कहा कि बच्चे तुम्हें किसकी डिक्शनरी में नाम लिखवाना है, टीचर बहन की या मेरी डिक्शनरी में, है ना, बाबा की डिक्शनरी में, ठीक है ना। सारे लोगों का विचार है, आप लोगों को विचार नहीं है क्या बाबा की डिक्शनरी, आप चुप अच्छा लेकिन साइलेंस में होंगे, ठीक है भट्टी में है ना, लेकिन मुरली की पॉइंट आप बता सकते हैं बोल मना व्यर्थ बातों से आप ये संकल्प कर लो कि सारा दिन कुछ भी हो जाए मुझे व्यर्थ नहीं बोलना, तो आपका मौन ही रहेगा सारा दिन। बाकी ज्ञान की बातें तो आप बोल सकते हैं। किसी ने दादी जानकी जी से पूछा, दादी आप कहते हो कि व्यर्थ मना व्यर्थ नहीं, दादी को बोला बहन कि दादी आप कहते हो ज्यादा बोलो नहीं, ज्यादा सोचो नहीं, लेकिन आप सारा दिन बोलती रहती है, सारा दिन सोचती रहती है। उस बहन ने बोला, सारा दिन बोलती रहती मना सारा दिन ज्ञान सुनाती रहती है और सारा दिन सोचती रहती मना ज्ञान की पॉइंट। तो दादी ने यही कहा कि देखो क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। आप जब ज्ञान की बातें बोलोगे तो उसमें एनर्जी नहीं घटेगी, उसमें एनर्जी बढ़ेगी। खुशी होती है ना तो एनर्जी बढ़ती है। वो बोल आपका समर्थ बोल है ना, किसी के जीवन का कल्याण हो रहा है ना, तो उसमें आपकी एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि उससे दुआ मिलेगी, दुआ आपको मिल रही है। इसी प्रकार योग में बैठते तो हम कुछ सोचते ही है ना, उससे हमारी एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन जब व्यर्थ बोलेंगे व्यर्थ सोचेंगे तो एनर्जी घटेगी। तो बात चल रही थी दान पुण्य की। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि कोई महिमा करे, कोई जाने। बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं ना कि थोड़ा तो कुछ होना चाहिए कि भाई मैंने इतना सेवा किया। तो बाबा ने कहा कि अच्छा ये बताओ, एक तरफ है 21 जन्मों का भाग्य की प्राप्ति और एक तरफ है अल्पकाल का नाम मान शान, तो आपको क्या चाहिए, 21 जन्मों का भाग्य चाहिए या अल्पकाल का नाम मान शान? 21 जन्मों का भाग्य चाहिए ना, लेकिन 21 जन्मों का भाग्य उस समय भूल जाते हैं। और बाबा तो वरदान, तो वर दाता है वो, तथास्तु, उसके मुख से तथास्तु निकलता। आपको जो चाहिए, अगर 21 जन्मों का भाग्य चाहिए तो अल्पकाल का नाम मानसान भूल जाओ, और अगर अल्पकाल का नाम मानसान चाहिए तो 21 जन्मों का भाग्य भूल जाओ। और बाबा ने कहा आपने सेवा किया है, आपका नाम होगा, मान होगा, महिमा होगी, सब कुछ होगा, लेकिन हम इतने उतावले हो जाते हैं ना कि अपने मुख से खुद ही वर्णन करना चालू कर देते हैं, तो वो कमी हो जाती है। ठीक है, अच्छा अभी हम एक मिनट के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। शरीर से डिटैच अपने आप को देखेंगे कि मैं बहुत तेजोमय आत्मा हूं, मैं बहुत तेजस्वी आत्मा, मुझसे चारों ओर तेज प्रकाश निकल रहा है। अशरीरी बन करके बैठ जाइए। ओम शांति। तो ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ेंगे। और क्या कहा बाबा ने, देह अभिमान में आकर क्या नहीं करना है? अच्छा, लून पानी नहीं होना है। और देह अभिमान की बाबा ने क्या क्या निशानियां बताई? हाँ, देह अभिमान में आकर फैशन नहीं करना है। और बाबा ने देह अभिमान की निशानियां बताई, लड़ना, झगड़ना, नवाबी दिखाना। हाँ, तो ये सब देह अभिमान है। तो बाबा ने कहा कि छोटी छोटी बातों में बिगड़ना ये भी था, तो ये सब देह अभिमान की निशानी है। तो किसी भी प्रकार का फैशन, बाबा ने कहा फैशन करने के लिए मैं इतना दिया हूं ना, बाबा ने कहा फैशन करने की आदत ही है तो बाबा ने कितने ज्ञान रत्नों के खजाने दिए हैं। दिव्य गुणों रूपी खजानों से फैशन करो। बाबा ने एक मुरली में कहा कि मैंने सुंदर सुंदर बच्चों को चमकीली ड्रेस दिया हूं, कभी फरिश्ता ड्रेस पहन लो, कभी पूज्य स्वरूप का ड्रेस पहन लो, कभी देवताई ड्रेस पहन लो, कभी सुदर्शन चक्रधारी, जो हमारे स्वमान है ना ये ड्रेस है। और बाबा ने कहा ये ड्रेस छोड़ करके बच्चे कौन से ड्रेस पहन लेते हैं? देहभान की ड्रेस, गंदे ड्रेस, अवगुण देखने वाले ड्रेस, है ना। तो बाबा ने कहा कि किसी भी प्रकार का, और आजकल की दुनिया में फैशन है ना, कई बार हम चले जाते हैं ना ज्यादा। बाबा ने ये भी कहा ना कि किसी की अच्छी घड़ी देखी तो क्या होगा, हाँ मेरे पास, और अच्छी ऊंची चीज होगी तो संकल्प चलेगा कहीं गुम ना हो जाए, और गुम हो गया तो भी संकल्प चलेगा। और आजकल मोबाइल है ना, अरे आपके पास बड़ी अच्छी मोबाइल है, कितने में लिया, मेरे पास भी। तो देखो है ना, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हमें अपने आप में देखना, ऐसी कौन सी बातें जो हमें आकर्षित करती है, तो उससे अपने आप को बचाना है। किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना है, माना जो हमें नीचे की ओर ले जाए, जो हमें हमारे अंदर कमियां लाए। इसलिए बाबा ने कहा साधारण रीति से चलना है। अभी हम वनबा में है ना, बाकी तो भविष्य में हम तो वहां पर तो हम बिल्कुल नीचे से ऊपर तक सजे ही होंगे। एक बार दादी जी सुना रही थी कि दादी ने बाबा से पूछा कि बाबा कुछ भाई बहने ऐसे होते हैं उनको सब कुछ फर्स्ट क्लास चाहिए, अच्छा अच्छा खाना पहनना, बाकी सेवा से जी चुराते हैं, और ऐसे आत्माओं को देखकर संकल्प चलता है कि सेवा करते नहीं है, बस इनको और हर चीज बढ़िया फर्स्ट क्लास चाहिए। तो बाबा ने कहा बच्ची सोचो नहीं, वो ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। दादी ने कहा अच्छा हो रहा है, कहा बाबा ने कहा हाँ, एक जन्म वो खा पी करके मौज कर रहे हैं और 21 जन्म तुम्हारे दास दासी बन करके रहेंगे, तो इतने सस्ते नौकर मिलेंगे कभी, है ना। तो सब अपना अपना, ये नहीं सोचो कि मैं इतनी सेवा करता हूँ, सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं करता है। तो आप आराम से खुश रहिए कि कोई बात नहीं, ये हमारे है ना, हम एक जन्म में थोड़ा सेवा कर रहे हैं, ये 21 जन्म हमारी सेवा करके करेंगे। अच्छा, फिर आगे बाबा ने क्या कहा, आपस में कैसे रहना है, रूहानी स्नेह से रहना है, लून पानी नहीं होना है ना। किसी से मन मुटाव, किसी ने कुछ बोल दिया कह दिया बस हमारी स्थिति खराब हो गई, वो नहीं। देखो किसी से हमारा मन मुटाव होता है तो हम क्या क्या सोचते हैं, पहले वो बदले, यही सोचते हैं ना, वो अपने आप को परिवर्तन करे। उससे हमें बात करने की इच्छा होती है, नहीं होती है। उसको सामने देखेंगे कि वो उधर से आ रहा है तो हम इधर से चले जाएंगे। अब हम बाबा के महावाक्य सामने लाएं, बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते बच्चे, जो बच्चे स्व परिवर्तन करते हैं विजय की माला उनके गले में पड़ती है। इसका मतलब समझा, आपसे अगर किसी से अनबन हो गई है, मन मुटाव हो गया है, तो आपको क्या करना है, स्व परिवर्तन अर्थात पहले आपको बोलना है। आप बोलेंगे तो विजय की माला आपके गले में, और वो बोलेगा तो विजय की माला उसके गले में। आप क्या चाहते हैं, हमारे गले में पड़े या उसके गले में पड़े। दो चार लोग ही चाहते हैं हमारे गले में, बाकी लोग भले पड़ जाए सामने वाले के चलेगा। हम सब चाहते ना विजय की माला हमारे गले में पड़े, चाहते हैं ना, हाँ या ना। हाँ, विजय की माला हमारे, लेकिन बोले पहले कौन। लेकिन हम क्या सोचते हैं, बोले पहले वो, माला हमारे गले में लेकिन बोले पहले वो, तो सिस्टम ही नहीं है। जो पहले बोलेगा अर्थात जो पहले परिवर्तन करेगा उसी के गले में पड़ेगी। तो ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो कि हम विजयी रतन बने, विजय माला के मड़के बने, तो किसी से मन मुटाव नहीं। अच्छा, हम कई बार कहते हैं, हम करते हैं सामने वाले को संतुष्ट, है ना, उसको हम मनाते हैं, उसको हम ये भी कहते हैं ठीक है भाई हमारी ही गलती है, आप खुश रहो, और हम कितना भी संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं वो संतुष्ट होता ही नहीं है, तो क्या करें। तो मुझे याद है बाबा की मुरली ओम शांति भवन में चल रही थी, मेरे सामने ही बाबा की मुरली चली और बाबा ने उसमें यही कहा कि कई बच्चे कहते हैं कि बाबा मैं सामने वाले को संतुष्ट करना चाहता हूं लेकिन वो संतुष्ट होता ही नहीं है, वो हमेशा नाराज ही रहता है, आंख ही दिखाता ही रहता है, तो क्या करें। तो बाबा ने उसमें कहा अच्छा बच्चे 5% छुट्टी है 5% फिर उसका अपना स्वभाव संस्कार, लेकिन 95% आप संतुष्ट करने की कोशिश करो, बाकी 5% की छुट्टी बाबा ने दे दी है। कईयों का नेचर ही होता है कितना भी संतुष्ट, देखो अगर हम संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमारा अंदर में हमारा मन प्रसन्न रहेगा, दिल खुश रहेगा। अच्छा फिर आगे बाबा ने क्या कहा, तो सन्नाटा हो गया बिल्कुल, क्या बात है आगे भी कुछ बाबा ने कहा ना। अच्छा गीता जयंती श्री जयंती अच्छी बात है, एक बाप दूसरा ना कोई, दे ही अम्मानी वरदान में क्या बाबा ने बोला आपने तो संपन्न हो वरदान में समर्पणता द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। तो किस बात का समर्पण, हाँ शूद्र बुद्धि का समर्पण। कई बार हम कहते हैं ना हमारी ये मान्यता है, हमारा ये विचार है, तो कभी भी हमारे अंदर है ना, चाहे संकल्प में बोल में कर्म में हम देखें हाँ बाप समान हमारी हमारे संकल्प हमारे बोल हमारे कर्म बने हैं, बाबा ने हमें बना अपना बनाया। देखो हम सभी का लक्ष्य ना बाबा समान बनना। एक बार गुलजार दादी ने कहा अच्छा आपको बहुत मेहनत लगता है पुरुषार्थ करना, तो एक शब्द पकड़ लो, मुझे अपने हर संकल्प बाप समान रखना है। तो जैसा संकल्प होगा वैसा बोल और कर्म स्वतः ही होगा। तो एकांत में बैठ करके हम अपने आप से पूछें क्या मेरा हर संकल्प बाप समान है, बोल बाप समान है, कर्म बाप समान है। अब मुझे वो नहीं सोचना जो दुनिया की आत्माएं सोचती हैं, वो नहीं बोलना जो दुनिया की आत्माएं बोलती हैं, वो नहीं करना जो दुनिया की आत्माएं करती हैं। अब हमें क्या करना है, जिसके लिए बाबा ने हमें अपना बनाया है। तो बाबा ने कहा सर्व खजाने जमा करो, उसके लिए बुद्धि स्वच्छ, जितना बुद्धि हमारा स्वच्छ साफ होगा, अगर हमने बुद्धि को पहले से ही भरपूर करके रखा व्यर्थ से, तो खजाने कहां जाएंगे, खजाने के लिए हमने जगह ही नहीं रखा। तो यदि हम चाहते हैं कि बाबा की जो वरदान है शक्तियां हैं ज्ञान गुण ये सारे खजाने हमारे अंदर जाएं, तो बुद्धि को बिल्कुल स्वच्छ साफ बनाना है। बाबा ने हमें बहुत सारे खजाने दिए हैं, अब इसके ऊपर आप चिंतन करना बाबा ने कौन कौन से खजाने दिए हैं, इसके ऊपर आप सोचना। बाबा ने एक मुरली में कहा कि अंत में ये सारे खजाने याद आएंगे कि बाबा से हमें बहुत सारे खजाने मिले थे लेकिन हम खाली के खाली रह गए, हम कुछ नहीं ले पाए। बाबा ने दिया तो था लेकिन हम उसको यूज नहीं किया, वो ऐसे के ऐसे रह गया। तो बाबा ने कहा जो बच्चे अभी रियलाइज कर लेते हैं, अभी सोच लेते हैं, अभी पश्चाताप कर लेते हैं, वो अंत के पश्चाताप से छूट जाएंगे। तो खजानों को बढ़ाने के लिए क्या विधि है कि जितना उसको हम सेवा में लगाएंगे उतना वो खजाने बढ़ते जाएंगे। तो इसके ऊपर चिंतन करना कि बाबा से क्या क्या खजाने प्राप्त हैं और उन खजानों को बढ़ाने की विधि क्या है, क्या वो खजाने बढ़ रहे हैं। और जो बाबा ने हमें खजाने दिए हैं वो अविनाशी खजाने हैं, सदा साथ चलने वाले हैं। तो इतना नशा, इतनी खुशी रहती है। अच्छा, और आगे स्लोगन, एक बाप दूसरा ना कोई, इससे फिर क्या होगा? हाँ, इस विधि से सदा वृद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। तो एक बाबा, अब हम ये देखें कि हम सदैव एक व्रता बन करके रहते हैं, एक बल एक भरोसा रहता है, हमारा निश्चय डगमग तो नहीं होता है। कई बार मनोहर दादी एक कहानी सुनाया करती थी साकार बाबा के समय की, कि जब यज्ञ में बेगरी पार्ट आया तो बेगरी पार्ट में सुबह है तो दोपहर में नहीं, दोपहर में है तो शाम को नहीं, तो कुछ लोगों को उस समय संशय आया, और संशय आने के बाद माना उस कुमारियां थी ना, वो सोचा कि मेरा इतना बड़ा जीवन, हाँ यहाँ तो आज सुबह है, नाश्ता तो भोजन नहीं है, भोजन है तो रात्रि का भोजन नहीं, कैसे हमारा इतना बड़ा भविष्य में क्या होगा, उनको संशय आया और यज्ञ छोड़ करके चली गई। और कुछ आत्माएं जो निश्चय बुद्धि रही वो रही। तो जब हम दादियों से पूछते, दादी जब लोग यज्ञ छोड़ छोड़ करके जाने लगे तो आप किस निश्चय के आधार से यज्ञ में आप बैठे रहे? तो दादी ने कहा, मुझे ये निश्चय था कि हमने भगवान का हाथ पकड़ के रखा है, किसी मनुष्य का नहीं। यज्ञ में कुछ नहीं होगा तो हम घास की रोटियां बना के खा लेंगे, लेकिन यज्ञ छोड़कर हम बाहर नहीं जाएंगे। ये था दादी का निश्चय। और आज हम लोगों क्या होता है, आप देखिए, दादी के सामने कोई, दादी बाबा मम्मा दादियों के सामने कोई उदाहरण नहीं, उनका निश्चय देखो हाँ, और हमारे सामने ये सारा उदाहरण होते हुए, दादी बाबा मम्मा सब हम उदाहरण देखें, और फिर भी यदि हमारे अंदर संशय आ जाए क्या होगा, कैसे होगा, अरे हम भूल जाते हैं कि किसको हमने अपना हाथ दिया है, किसने वायदा किया है, हम किसकी छत्र छाया में आए हैं, हमारे ऊपर किसने हाथ रखा है, किसने हाथ रखा है, ले ले ये भी सोचने की बात है क्या? किसने हाथ रखा, भूल गए क्या? देखो, एक दुनिया में किसी के ऊपर गुरु हाथ रख देता है, अरे गुरु जी ने हमारे सिर के ऊपर हाथ रख दिया, और आपके ऊपर किसने हाथ रखा है? सतगुरु स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान, उसने आपके ऊपर हाथ रखा है। तो आज हम देख रहे हैं कि जो उस समय संशय आया, यज्ञ छोड़ करके बाहर चले गए, आज वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं वो भी, क्योंकि तो अविनाशी ज्ञान का बीज पड़ा है, तो जाएंगे कहां? बाबा कहते ना मुरली में कि हट्टी तो एक ही है, स्थान तो एक ही है, घूम घुमा करके तो यहीं आना है, और वो आज आ रहे हैं। तो जब दादियों से मिलने की बात होती है तो जैसे और भाई बहने दादियों के सामने लाइन लगाते हैं, टोली लेने आते हैं, वैसे वो भी आते हैं, लेकिन उनके आंखों में आंसू भर आता है, और वो कहते हैं कि ये दादियां, इन्हीं के साथ हम भी ज्ञान में आ गए, इनके साथ हम भी ज्ञान में आए थे, और ये विश्व की दादी मां बन गई, और मैं संशय आया छोड़ करके चली गई, और दो बच्चों की दादी मां बन के रह गई। बहुत पश्चाताप होता है, लेकिन वही है, चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताए क्या होता। तो इतने सारे मिसाल, इतने सारे उदाहरण होते हुए भी यदि हमारे अंदर संशय आ जाए क्या होगा, कैसे होगा, तो क्या कहेंगे? तो सदैव सोचे, भगवान हमारे साथ है, हजार भुजा वाला मेरे साथ है। देखो, जीवन में कोई समस्या आती है, परिस्थिति आती है, तो हमारी नजर ऊपर जाती है, सबसे पहले ऊपर तो नहीं जाती है, पहले तो हम एक दूसरे का सहयोग ढूंढते हैं। बाबा तो कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, बच्चे बुलाए बाप ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे यूज करो, मुझे याद करो। लेकिन हम किसको देखते हैं, किसकी तरफ देखते हैं? अपने जब कोई प्रैक्टिकल बात आप देखो, जब हमारे सामने कोई समस्या परिस्थिति आती है तो हम एक दूसरे का सहयोग ढूंढते हैं, एक दूसरे के पास दौड़ लगाएंगे, भाई जरा हमें सहयोग करना, ये समस्या आ गई, ये बातें आ गई। और जब कहीं से सहयोग नहीं मिलता, सब तरफ लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, सब तरफ से ना हो जाता है, तो हम फिर बाबा को कहते, बाबा आप ही तो हमारे हो, आपके सिवाय हमारा और कौन है। बड़े प्यार से बाबा से रूरिहान करते हैं और बाबा भी मुस्कुराते कि हाँ ये बच्चा चारों तरफ से चक्कर लगा करके है। लेकिन बाबा ये नहीं कहते, चलो बाबा मदद करते हैं। अच्छा देखो, हमारा कोई दोस्त है, वो चारों तरफ से घूम करके लास्ट में मेरे पास आए और हमें बड़े प्यार से कहे, भाई तुम ही तो हमारे पक्के दोस्त हो, है ना, तुम ही हमारा मदद करो करोगे, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे ना, अच्छा अब चारों तरफ से घूम करके आ गए, कहीं मदद नहीं मिली ना, देख लिया ना, भले हम मदद करेंगे लेकिन एक शब्द अपना एहसान उसको, हाँ उसके ऊपर एहसान लाद लेंगे, अब चारों तरफ से घूम करके आ गए ना, देख लिया ना, कहीं मदद नहीं मिली ना, फिर हम मदद करेंगे। लेकिन बाबा ऐसा नहीं करता, जैसे बच्चे ने याद किया और बाबा की मदद तुरंत मिली, ये है। तो बाबा कहते, बच्चे सोचो तो सही, हजार भुजा वाला भगवान ज्यादा मदद करेगा या दो भुजा वाला मनुष्य, कौन ज्यादा मदद करेगा? तो बाबा ने कहा, जब पता है हजार भुजा वाला भगवान ज्यादा मदद करेगा, फिर तुम दो भुजा वाले की तरफ क्यों देखते हो, क्यों नहीं मेरी तरफ देखते, क्यों नहीं मेरी मदद लेते, है ना? बाबा का भी दूसरा प्रश्न है कि क्यों नहीं मेरी मदद लेते, हा? तो बाबा ने कहा, 63 जन्मों से तो तुम दूसरों की तरफ देखते आए, बोझ उठाते आए, मेहनत करते आए कि नहीं? बाबा ने कहा, 63 जन्मों से बोझ उठाते उठाते थके नहीं हो क्या? बाबा कहते, मैं हजार भुजा वाला हूं ना, सारा बोझ मुझे दे दो, आप हल्के रहो, मेरे बच्चे परमात्म बच्चे और मेहनत, परमात्म बच्चे और बोझिल, परमात्म बच्चे और परेशान, बाबा कहते मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो आपका बच्चा उदास हो, माताओं का अनुभव होगा, आपका बच्चा उदास हो, दुखी हो, परेशान हो, तो आपको अच्छा लगेगा? लगेगा नहीं? लगेगा ना। आप क्या कहेंगे, आप क्या चाहेंगे, मेरा बच्चा खुश रहे, मौज में रहे, है ना? तो ऐसे बाबा भी चाहते हैं कि बच्चे मौज में रहो, खुश रहो, हाँ। और कोई बोझ है मुझे दे दो, तुम एक चित्र भी ना कि तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। और हम कई बार, तुम बैठे रहो, हम तो आदत पड़ गई है बिना चिंता किए, है ना? मुझे एक स्लोगन बहुत अच्छा लगता है, बाबा कहते एक बच्चे, तुम मेरी याद में मगन रहो तो मैं क्या करूंगा, क्या सचमुच, मैं तो इसको बड़े अक्षरों में लिख करके अपनी डायरी में रखता हूं, बाबा ने गारंटी की है कि तुम्हारा एक ही काम है, मेरी याद में मगन रहना, बाकी तुम्हारे लिए मैं सोचूंगा भी, इससे बढ़के और कुछ चाहिए क्या? भगवान हमारे लिए सोचेगा भी, हमारा काम है उसकी याद में मगन रहना, हा? आप भगवान से ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं क्या? जिसके आप सोचो, जिसके लिए भगवान सोचे, हा? तो उसका कभी अकल्याण हो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है? नहीं। अच्छा, लेकिन जब हम सोचते हैं तब वो सोचना बंद कर देता है, ठीक है ना? वो कहता, मैं क्यों बीच में पढ़ूं, तुम सोचो, है ना? लेकिन जिस क्षण हम सोचना बंद कर देते हैं, हा? तो वो सोचने लगता है हमारे लिए। तो जब वो बैठा है सोचने के लिए, हा? तब हमें सोचने की क्या जरूरत? तो इस प्रकार से रोज आप यहां से ये नियम बनाओ कि रोज की मुरली हम सुनते तो हैं, लेकिन बहुत जरूरी होता है उसके ऊपर चिंतन करना। और चिंतन करके अगर लिख ले तो वो आपका अपना बन जाएगा, फिर जीवन में कभी भूल नहीं सकता और योग भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी 10:30 बज रहे हैं, 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे।